एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं।
नमस्कार, और मैं हूं आपकी साथी होस्ट। किताब का नाम है थैंक यू फॉर आर्ग्यूइंग, जे हेनरिक्स की लिखी हुई।
हाँ, और ये टाइटल थोड़ा चौंकाता है ना, आर्ग्यू करने के लिए थैंक यू, लेकिन ये किताब बहस को एक नेगेटिव चीज की तरह नहीं देखती है।
बिल्कुल नहीं, असल में ये सिखाती है कि कैसे बातचीत, यहाँ तक कि असहमति भी रिश्तों को और बेहतर बना सकती है। और ये सिर्फ बहस जीतने के नुस्खे नहीं है।
सही कहा, ये रिटोरिक की कला है, मतलब प्रभावी ढंग से बात करने और समझाने की कला।
और आज के जमाने में तो इसकी जरूरत शायद पहले से कहीं ज्यादा है। आप देखिए ना, सोशल मीडिया पर, टीवी डिबेट्स में, कभी कभी घर में भी।
हाँ, बातचीत बड़ी जल्दी लड़ाई बन जाती है, चिल्लम चिल्ली।
वही
तो ऐसे में ये सीखना कि अपनी बात कैसे रखें, दूसरों को कैसे समझें और समझाएं, और सबसे जरूरी, बिना झगड़े के किसी नतीजे पर कैसे पहुंचें, ये तो मतलब एक सुपर पावर जैसा है।
और इसके लेखक जे हेनरिक्स, वो सिर्फ कोई एकेडमिक स्कॉलर नहीं है।
हाँ, वो बात है, वो रेटोरिक के विद्वान तो हैं, पर उन्होंने इसे असल दुनिया में जिया है। मतलब वो पत्रकार रहे हैं, एडिटर रहे हैं,
और नासा, फॉर्च्यून 500 कंपनीज इनको कम्युनिकेशन पर सलाह भी दी है। तो उन्हें पता है कि ये चीजें असल में कैसे काम करती हैं।
और यही उनके लिखने के तरीके को खास बनाता है। वो अरस्तु, सिसरो जैसे हजारों साल पुराने विचारकों की बातें लेते हैं।
हाँ, भारी भरकम फिलोसोफर्स की बातें हैं,
और उन्हें आज की आम जिंदगी से जोड़ देते हैं। मजे की बात तो ये है, वो अक्सर अपने ही घर के उदाहरण देते हैं।
अच्छा।
अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ हुई छोटी मोटी नोक झोंक के।
अच्छा, इसे तो रेटोरिक जैसा सीरियस टॉपिक भी मजेदार बन जाता होगा।
बिल्कुल, एकदम आसानी से समझ आने वाला। तो ये किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बढ़िया मिक्स है।
तो फिर किताब का मेन आइडिया क्या है, मतलब सार क्या है?
देखिए, सबसे पहली बात जो हेनरिक्स कहते हैं वो ये कि आर्ग्यूमेंट यानी बहस और फाइटिंग यानी लड़ाई, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं।
अक्सर हम इन्हें एक ही समझ लेते हैं।
हाँ, लड़ाई का मकसद होता है जीतना, सामने वाले को गलत साबित करना, जबकि एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव बहस का लक्ष्य होता है मिलकर किसी नतीजे पर पहुंचना, सहमति बनाना।
ओके, ये तो बड़ा बुनियादी फर्क है।
और यहीं से किताब का एक बहुत जरूरी पॉइंट निकलता है। सबसे असरदार बहसें जो होती है ना, वो भविष्य पर फोकस करती हैं।
भविष्य पर मतलब?
मतलब इस सवाल पर कि हमें आगे क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि पीछे किसकी गलती थी या अभी कौन सही कौन गलत।
अच्छा, हाँ ये बात तो है, हम अक्सर अतीत में ही उलझे रहते हैं, किसकी गलती थी, किसने क्या कहा।
बिल्कुल, या फिर मूल्यों की लड़ाई में फंस जाते हैं, तुम गलत हो मैं सही हूँ। लेकिन इससे हल तो नहीं निकलता ना, भविष्य पर फोकस हमें सोल्यूशन की तरफ ले जाता है।
तो ये हुआ एक बड़ा आइडिया।
और
फिर वो बताते हैं अरस्तु के बताए 3 स्तंभ, समझाने के 3 तरीके, ईथोस, पैथोस और लोगोस।
ईथियोस, पैथोस, लोगोस, ये तो सुने हुए शब्द लगते हैं।
हाँ, सुने होंगे। ईथोस है आपका चरित्र, आपकी विश्वसनीयता, लोग आप पर कितना भरोसा करते हैं।
क्रेडिबिलिटी।
पैथोस है भावनाओं को समझना और उनसे कनेक्ट करना, इमोशंस।
और लोगोस?
लोगोस है तर्क, लॉजिक, आपकी दलीलें कितनी मजबूत हैं। किताब सिखाती है कि इन तीनों का बैलेंस कैसे बनाना है।
मतलब सिर्फ लॉजिक काफी नहीं?
नहीं, सिर्फ इमोशंस। और अगर लोग आप पर भरोसा ही नहीं करते, यानी ईथोस कमजोर है, तो आपका लॉजिक और इमोशन दोनों बेकार जा सकते हैं। ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, बल्कि सोचने का एक पूरा फ्रेमवर्क है।
दिलचस्प। चलो थोड़ा और गहराई में जाते हैं। शुरुआत करते हैं वहीं से, बहस बनाम लड़ाई। हाँ, तो हेनरिक्स कहते हैं कि किसी भी बहस में उतरने से पहले खुद से पूछो, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं चाहता चाहती क्या हूँ।
लक्ष्य जैसे?
क्या आप सामने वाले का मूड बदलना चाहते हैं, या उनके विचार, या उनसे कोई खास काम करवाना चाहते हैं? अगर लक्ष्य साफ नहीं है तो बहस भटक जाती है
और फिर लड़ाई बन जाती है।
एग्जैक्टली। लक्ष्य साफ हो तो स्ट्रेटजी बना सकते हैं।
ओके, लक्ष्य तय कर लिया, फिर?
फिर आता है सही काल यानी टेंस चुनना। ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। 3 काल होते हैं बहस के।
3 काल जैसे व्याकरण में होते हैं?
हाँ, कुछ वैसा ही। पहला है अतीत, पास्ट टेंस। इसमें फोकस होता है किसकी गलती थी, ब्लेम गेम। इसे कहते हैं न्यायिक या फोरेंसिक रेटोरिक। ये कोट वगैरह में ज्यादा चलता है. दूसरा है वर्तमान, प्रेजेंट टेंस. इसमें फोकस होता है क्या सही क्या गलत, कौन अच्छा कौन बुरा, वैल्यूज पर. इसे कहते हैं प्रदर्शनकारी या डिमॉन्स्ट्रेटिव रेटोरिक, जैसे किसी की तारीफ या बुराई करना.
ओके.
और तीसरा जो हेनरिक्स के हिसाब से सबसे जरूरी है वो है भविष्य, फ्यूचर टेंस. फोकस होता है हमें क्या करना चाहिए, आगे का रास्ता क्या है. इसे कहते हैं विमर्शकारी या डेलिब्रेटिव रिटोरिक.
और आप कह रही हैं कि सबसे अच्छी बहस इसी फ्यूचर टेंस में होती है.
हाँ, क्योंकि यहीं पर मिलकर सोल्यूशन निकालने का स्कोप बनता है. अतीत तो बीत गया, वर्तमान मूल्यों पर लड़ाई खत्म नहीं होती, भविष्य ही है जहां हम मिलकर कुछ बना सकते हैं.
कोई उदाहरण जैसे घर में.
हाँ बिल्कुल. मान लो घर में बहस है कि बर्तन कौन धोएगा. अगर आप कहें तुमने कल भी नहीं धोए थे, अतीत, या तुम तो हो ही कामचोर, वर्तमान, तो क्या होगा,
झगड़ा बढ़ेगा.
राइट? लेकिन अगर आप कहें चलो आगे के लिए फिक्स कर लेते हैं कि किसकी बारी कब होगी, ताकि रोज रोज की किचपिच खत्म हो.
भविष्य.
हाँ, इसमें बात बनने के चांस ज्यादा हैं. कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल आइडिया है ना? अब आते हैं उन तीन हथियारों पर, ईथॉस, पैथॉस, लोगोस. और हेनरिक्स कहते हैं, और ये शायद सबसे अहम बात है, कि ईथॉस सबसे पहले आता है.
आपकी विश्वसनीयता, भरोसा.
हाँ, अगर सुनने वाले को आप पर भरोसा ही नहीं तो दुनिया का बेस्ट लॉजिक भी फेल है. और भरोसा बनता है तीन चीजों से. पहला सद्गुण, मतलब लगे कि आप उनके जैसे हैं, उनके मूल्यों को समझते हैं. दूसरा व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल विजडम, मतलब लगे कि आपको पता है आप क्या कह रहे हैं, आप काम करना जानते हैं, स्ट्रीट स्मार्टनेस टाइप.
ओके.
और तीसरा निस्वार्थता, मतलब ऐसा लगे कि आप सिर्फ अपने फायदे की नहीं सोच रहे बल्कि सबकी भलाई देख रहे हैं.
जैसे डॉक्टर की सलाह हम मानते हैं क्योंकि हमें उनके ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, नेक इरादे, सद्गुण और प्रोफेशनल अप्रोच, निस्वार्थता पर भरोसा होता है.
परफेक्ट, यही ईथोस है. इसके बाद आता है पैथोस, यानी भावनाएं.
इमोशंस. हमें लगता है लॉजिक और इमोशन दुश्मन है.
हाँ, पर हेनरिक्स कहते हैं नहीं, पैथोस का मतलब सिर्फ रोना पीटना या गुस्सा दिलाना नहीं है. इसका मतलब है सुनने वाले की भावनाओं को समझना और उन्हें अपनी बात से जोड़ना, कहानी सुनाना, ह्यूमर, एम्पथी, ये सब पैथोस है.
जैसे विज्ञापन करते हैं, कभी हंसाते हैं, कभी इमोशनल कर देते हैं.
बिल्कुल. एक अच्छा कम्युनिकेटर जानता है कि इमोशंस को लॉजिक का दुश्मन नहीं, साथी कैसे बनाना है.
और तीसरा
लोगोस.
लोगोस यानी तर्क. पर ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी वाला लॉजिक नहीं, ये है प्रैक्टिकल, रोजमर्रा की समझ वाला तर्क. हेनरिक्स यहां एक टर्म यूज करते हैं, एंथीमीम.
एंथीमीम ये क्या चीज है?
सुनने में भारी लगता है पर आसान है. ये एक तरह का अधूरा तर्क होता है. आप एक बात कहते हैं, नतीजा बताते हैं और बीच की एक कड़ी छोड़ देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सुनने वाला उसे पहले से मानता है.
जैसे जैसे हेल्दी खाना खाओ क्योंकि सेहत अच्छी रहेगी. यहाँ ये मान लिया गया है कि सुनने वाला सेहत को अच्छा रखना चाहता है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी. इससे सुनने वाले को लगता है कि उसने खुद कनेक्शन बनाया.
अच्छा, मतलब ऐसा लॉजिक जो लोगों की कॉमन सेंस से मैच करे.
हाँ, ये हुए अपनी बात रखने के तरीके. पर बचाव भी तो जरूरी है जब कोई हमें गलत तर्कों से बहकाने की कोशिश करे.
हाँ, वो कैसे पहचाने?
उसके लिए हेनरिक्स बताते हैं लॉजिकल फैलसीज, यानी तार्किक भ्रांतियां. वो मजाक में इन्हें तर्क के साथ घातक पाप कहते हैं. ये ऐसी दलीलें हैं जो सुनने में सही लग सकती हैं पर होती गलत हैं.
कुछ उदाहरण?
एक बहुत कॉमन है पुआल का आदमी, स्ट्रॉ मैन, मतलब आप सामने वाले के असली तर्क पर हमला नहीं करते बल्कि उसके तर्क को कमजोर बनाकर पेश करते हैं और फिर उस कमजोर वर्जन पर हमला करते हैं.
अच्छा, जैसे कोई कहे ट्रैफिक कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करें और जवाब मिले तो आप चाहते हैं सब अपनी कार बेच दें.
बिल्कुल, ये स्ट्रॉ मैन है. एक और है फॉल्स डिलेमा, जब आपको सिर्फ दो ही चॉइस दी जाती हैं जबकि और भी हो सकती हैं, या तो ये या वो.
या तो तुम मेरे साथ हो या मेरे दुश्मन टाइप.
हाँ, इन फैलसीज को पहचानना बहुत जरूरी है. इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग मजबूत होती है.
और हम गुमराह होने से बचते हैं.
अच्छा, ये तो हुई बचाव की बात. कुछ एडवांस टेक्निक्स भी हैं?
हाँ, कई हैं. एक है काइरोस. ये ग्रीक शब्द है, इसका मतलब है सही समय, सही मौका, सही मीडियम,
टाइमिंग.
हाँ, ये तो बहुत जरूरी है. सही बात गलत समय पर कहो
तो गड़बड़ हो जाती है. इसमें ये भी आता है कि बात कैसे कहनी है, ईमेल, फोन, आमने सामने, माहौल क्या है.
और काइरोस से ही जुड़ा है डिकोरम.
हाँ, डेकोरम मतलब सुनने वालों के हिसाब से ढलना। आपकी भाषा, आपका पहनावा, आपका तरीका, सब ऐसा हो कि लोग आपसे कनेक्ट कर पाएं, उन्हें लगे कि आप उन्हीं में से एक हैं।
जैसे नेता लोग करते हैं, अलग अलग जगह पर अलग भाषा, अलग कपड़े।
वही, ये डेकोरम साधना है। जब लोग अपना समझते हैं तो बात ज्यादा सुनते हैं।
और एक और तकनीक थी रियायत, कंसेशन।
हाँ, रियायत या कॉन्सीडो, ये बड़ी पावरफुल चीज है। इसमें आप बहस में सामने वाले की किसी बात से सहमत हो जाते हैं।
सहमत बहस में।
हाँ, इससे लगता है कि आप खुले दिमाग के हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, आपका ईथोस बढ़ता है, और फिर उसी सहमति को यूज करके आप अपनी बात रखते हैं।
कैसे?
जैसे, हाँ, मैं मानती हूँ कि बजट टाइट है और इसीलिए हमें इस नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इससे बचत होगी। देखा, पहले सहमत हुए, फिर अपनी बात रखी।
वाह, ये तो स्मार्ट है।
और आखिर में फ्रेमिंग, मतलब मुद्दे को अपने शब्दों में ढालना, जो बहस का फ्रेम कंट्रोल करता है, यानी ये तय करता है कि बात असल में किस बारे में है, वो अक्सर बहस की दिशा भी कंट्रोल करता है।
जैसे किसी चीज को खर्चा कहना या निवेश कहना।
बिल्कुल, फ्रेम बदलते ही पूरा नजरिया बदल जाता है।
जबरदस्त, इतनी सारी चीजें हैं। अगर कुछ मेन पॉइंट्स निकालने हो तो क्या होंगे? मेरे लिए तो पहला यही कि बहस लड़ाई नहीं है, लक्ष्य जीतना नहीं, सहमति है।
हाँ, और दूसरा, भविष्य पर फोकस करने की ताकत। अतीत को छोड़कर आगे देखना, घर हो या ऑफिस, ये बहुत काम आता है।
तीसरा, ईथोस सबसे जरूरी है। भरोसा, क्रेडिबिलिटी, इसके बिना सब बेकार। भारत में तो रिश्तों और भरोसे का वैसे भी बहुत महत्व है।
बिल्कुल। चौथा, ऑडियंस इज किंग। हमेशा सुनने वाले को ध्यान में रखो। डेकोरम, काइरोस, सब इसी से जुड़ा है। उनकी जरूरतें, उनके मूल्य समझो।
और पांचवा,
पांचवा ये कि रिटोरिक सिर्फ बोलने की कला नहीं, सोचने का तरीका है। इसे समझने से हम मीडिया, एड्स, पॉलिटिक्स सबको बेहतर समझ पाते हैं, गुमराह होने से बचते हैं।
हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग टूल है एक तरह से।
किताब में कुछ लाइंस भी बड़ी यादगार हैं, जैसे, बहस का लक्ष्य जीतना नहीं बल्कि एक अच्छा निर्णय लेना है।
ये पूरी सोच बदल देती है, बहस को सहयोग बना देती है।
एक और, बहस इस बारे में नहीं है कि कौन सही है, बल्कि इस बारे में है कि कौन अधिक प्रेरक है।
ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लग सकता है।
हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि सच जरूरी नहीं, मतलब यह है कि सच को भी प्रभावी ढंग से पेश करना पड़ता है।
ओके।
और सबसे प्रभावी तर्क वो है जो तर्क को कहानी के साथ मिलाता है और उसमें भावनाओं का तड़का लगाता है, लॉजिक, स्टोरी, इमोशन का मिक्स।
हाँ, हम कहानियों से ज्यादा जुड़ते हैं।
और वो फ्यूचर वाली बात, भविष्य के बारे में बात करने वाला व्यक्ति बहस जीतता है।
क्योंकि वो उम्मीद और समाधान की बात करता है।
बिल्कुल। अब सवाल ये कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कैसे लागू हो?
हाँ, असल जिंदगी में, जैसे रिश्तों में।
सोचिए, पति पत्नी में कोई अनबन है, अतीत की बातें छोड़कर भविष्य पर आएं। आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें? अगर सामने वाले की बात में दम है तो उसे माने, रियायत, इससे टेंशन कम होगी।
ऑफिस में, मीटिंग में अपना आइडिया पिच करना है।
हाँ, पहले अपना ईथोस बनाएं, दिखाएं कि आपने रिसर्च की है, व्यावहारिक ज्ञान, और ये टीम के लिए अच्छा है, निस्वार्थता, सही टाइम, काइरोस, देखें, लॉजिक, लोगोज के साथ बताएं कि इससे सबका फायदा कैसे होगा, पैथोस,
और आम नागरिक या उपभोक्तों के तौर पर
विज्ञापनों, नेताओं के भाषणों को समझें, पूछें ये कौन सी तकनीक यूज कर रहे हैं, क्या ये इमोशन से खेल रहे हैं, पैथोस, क्या कोई फैलेसी है। ये समझ हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करती है।
वो ऑफिस वाला उदाहरण अच्छा था। दो लोग लड़ रहे हैं कि किसकी गलती थी, अतीत। तीसरा कहता है, चलो छोड़ो, अब देखते हैं काम पूरा कैसे करें और आगे ये प्रॉब्लम ना हो।
भविष्य, हाँ, फोकस बदलते ही रास्ता खुल जाता है।
मेरे लिए तो इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि हम सब अनजाने में रिटोरिक यूज करते ही हैं। इसे जानना बस हमें ज्यादा कॉन्शियस और इफेक्टिव बनाता है।
और मेरे लिए शायद ईथोस का महत्व। हम अच्छे तर्क या इमोशनल अपील पर फोकस करते हैं, पर भूल जाते हैं कि अगर भरोसा ही नहीं तो सब बेकार। ये याद रखना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं।
हाँ,
आज की दुनिया में जहां इतने अलग अलग विचार हैं, इतना शोर है, सच झूठ का फर्क करना मुश्किल है। क्या ऐसे में जिम्मेदारी से, नैतिकता के साथ अपनी बात कहना और दूसरों को समझना, ये कला सीखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।